महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनं भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवलविख्यातम् महाबंधम नमामि। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है। रवि माये पृष्ठ संख्या 40 पर 40। काल की प्ररूपना चल रही है और उसमें भी हम जघन्य अनुभाग बंध का काल देख रहे थे। अब कषाय मार्गना में हम पढ़ने जा रहे हैं 40 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ। क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि चार घाती कर्म का तो अपने अपने शपक में वेदक काल जो है क्रोध का अंतिम समय, मान का, माया का, लोक का, तो वहां एक समय होगा। गोत्र कर्म का तो हमने देखा सातवें नरक में है ना, तथा अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर होते हैं, क्योंकि ये कषाय पलटती है इसलिए। जघन्य का एक समय हाँ, उपशम श्रेणी उतरते हुए एक समय में मरकर
पीछे क्रोध पलट गया।
हाँ, कषाय पलट गया ऐसा ले सकते हैं। देव में जाने पर पलट सकता है ना, क्रोध का उदय शुरू हुआ एक समय के लिए अजगने रहा।
तो क्रोध एक ही समय के लिए, दो समय के लिए, एक ही समय के लिए क्रोध का काल ही एक समय हुआ।
क्रोध का उदय हुआ एक समय में, मरण हुआ और वहाँ अन्य कषाय चालू हो गई देव में।
क्रोध का उदय हुआ एक समय के लिए,
अजगन ने बंद किया
और वापस वो पलट गया एक समय के,
दूसरा कषाय चालू हो गया
उसी भाव में। हो सकता
देव उसी भाव में श्रेणी उतरते समय कैसे होगा, क्योंकि जब तक क्षप इसका चार घाती कर्म का जगन ने कहा है तो क्षपक के तो अजगन्य, तब तक तो अजगन्य है, तो एक समय में तो क्रोध कषाय पलटेगा नहीं ना। एक समय में पलटेगा, अन्य तीन क्रोध रूप होते, क्रोध में क्रोध क्या होगा, ये आघात से जो हुए अन्य कषाय क्रोध रूप होते हैं, उन क्रोध कैसे एक समय में पलटेगा। ऊपर क्या है, कोदादि चार गादी, कोदादि चार गादी जान गोद जन्य जन एक समय उक्त सब समय। अरे उत्कृष्ट जगन्य और उत्कृष्ट दोनों एक समय ही होता है, और जगन्य जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतम होता है।
जगन्य
जन्य एक उपकस बे समय कैसे होगा क्रोधादि कषाय में जघन्य का उत्कृष्ट काल, क्योंकि क्रोधादि का उदय है तो वह ऑलरेडी वो अनिवृत्तिकरण में है, तो प्रति समय अनुभाग बंध अलग अलग होगा, एक ही समय होगा। तो वहाँ क्रोधादि जघन्य एक जघन्य उपकस एक, यानी जघन्य के बाद उसको अंदर ले लो उपकस को और बे समय निकाल दो। अजगन्य जघन्य एक समय उपकस अंत हो। क्रोध का एक समय उपशम श्रेणी से उतरते हुए क्रोध का उदय शुरू हो गया, उदय शुरू हो गया तो अजगन्य बंद हुआ और मरकर देह में गया, वहां हम कहेंगे लोक का उदय शुरू हुआ या अन्य किसी विषय। हाँ क्रोध का जघन्य काल, क्रोध कषाय का जघन्य काल कितना है सकते हैं? तो अन्यत्र कहीं नीचे के कहीं पर भी ले सकते, मिथ्या दृष्टि को भी ले सकते। एक समय में उदय पलट जाता है और क्रोध रूप हो जाता है।
अच्छा,
व्याघात से
तो मरण की अपेक्षा नहीं,
वो कर्म कांड में मिलेगा क्या? उसमें मिलता है, क्रोध का एक समय काल है। चारों कषाय क्रोध के साथ व्याघात नहीं होता, शेष तीन के साथ होता है। व्याघात ने वो समझो वो कषाय शुरू हो गई तो अटक गए बीच में और वो क्रोध रूप परिणमित हो गया, उसको व्याघात कहते हैं। व्याघात ने भंग हो जाना, जैसे कोई लोभ कषाय चल रहे, मान चल रहे, माया चल रहे और कोई ऐसी कुछ बाह्य प्रसंग हम निमित्त की ओर से देखेंगे तो वो तो पलट कर डायरेक्ट क्रोध रूप हो जाता है। तीन कषाय में व्याघात होता है। मरण की प्ररूपणा में क्रोध कषाय को नरक में उत्पन्न कराना, मान कषाय को नरक में, माया कषाय को तिरंज में और लोक कषाय देवगण, इस प्रकार यथायोग्य रूप से सभी गुण सुन। चारों कषायों का जगत ने एक समय बताया, मरण की प्रकट में क्रोध कषाय को नरक में उत्पन्न कराना, उसका अर्थ क्या है? क्रोध और मान को नरक में बताया, माया को तिरंज में और लोभ को देव में, गुणस्थानों में मरकर वहां उत्पन्न कराना, इस तरह से बताते हैं। इन्हें सबका जगन्य काल एक समय बताया है उन्होंने, चारों कषायों का। जगन्य काल सातवें में व्याघात नहीं बताया, प्रोक्तवत सातवें में व्याघात नहीं।
आप अभी जो एक एक समय बता रहे हैं, हाँ
जगन्य, जगन्य तो एक समय है। देखो अभी क्रोध मान ये मार्गणा की बात है, क्रोध मान माया आठ नौ गुणस्थान उपशम श्रेणी में, एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय, नौ आठ नौ दस में अवरोहक और नौ दस में आरोहक, अवरोह के नहीं उतरने वाला, आरोह के नहीं चढ़ने वाला, आरोह को अवरोह के प्रथम समय में मरण, मरण की अपेक्षा क्रोध मान माया में, यानी वो लोभ में उत्पन्न हुआ। और लोभ के बारे में शपक दसवें आठ नौ दस, एक समय शपथ कैसे कषाय में एक समय बताया ये कम जो ब्रैकेट में क्षपक लिखा है वो उपशमक होना चाहिए। लोक कषाय में भी उन्होंने एक प्रथम समय में मरण लिया, यानी वो कषाय का उदय शुरू हुआ और एक समय में मर गया इस तरह से।
लोक का उदय शुरू हुआ एक समय में, ऐसा नहीं हुआ और मर गया और वहां से दूसरा कषाय शुरू हुआ।
उपशम श्रेणी में लिखा
है
दो मत है, किसी भी कषाय से उत्पन्न होता है। यहाँ तो ये ऊपर अलग लिखा है, नीचे अलग लिखा है। ये अलग अलग क्यों लिखे? चारों कषाय एक बार लिखा, फिर दोबारा चारों कषाय, फिर क्रोधमान माया का लिखा, लोक का अलग लिखा। यानी एक ही के लिए अलग बहुत बार उन्होंने अलग अलग कथन किए। ठीक है, यही होता है उपशमक में, एक समय में मरकर एक समय घटित होता है।
एक समय के लिए कोई भी कषाय का उदय
अन्य तीन का व्याघात किस उदय हो सकता है ऐसा नहीं कहेंगे। व्याघात से एक समय में पलटकर क्रोध में आ सकता है, क्रोध का व्याघात नहीं
होता।
और अन्यत्र भी मरण की अपेक्षा से भी एक समय घटित होता है, कहीं पर भी अन्य गति में ले जाना। तो वहां जैसे यहाँ लोभ में था, एक समय में मरकर फिर वहां क्रोध ही हो गया अन्य गति में जाकर। कहीं पर भी अजघन्य कहीं पर भी, जो क्षपक अंतिम समय में उसका जघन्य है उसको छोड़कर सर्वत्र अजघन्य ही है। और चार घाती है ना, वो तो बंद ही रहे। वेदनीय और नाम लास्ट लाइन 40 पेज लास्ट लाइन। हाँ, वदनीय का वेदनीय करना। वेदनीय और नाम कर्म का भंग अपर्याप्त कों के समान है, एक समय से चार समय और अंतर्मूर्त। जघन्य एक समय से चार समय, पंचमी तीरंचा पर्याप्त को हमने देखा था। ओ वेदिनी नाम गोत्र के एक समय से चार समय, पेज नंबर 37 पर। पेज पर तीरंच लब्धि पर्याप्त ऊपर से तीसरी लाइन में शुरू हुआ था। वेदिनी नाम गोत्र पांचवी लाइन में लिखा है। जघन्य अनुवाद बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल चार समय, क्योंकि मध्यम परिणाम में जघन्य होता है। और अजघन्य का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वैसे यहाँ पर भी ले, क्योंकि एक कषाय पलटेगी नहीं इसलिए अंतर्मूर्त। अपर्याप्तों में तो अपर्याप्त का भाव ही अंतर्मूर्त का है, काय स्थिति भी अंतर्मूर्त की थी। अब 41 पेज पर आते हैं। विभंग ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है बराबर का। एक समय कब होगा विभंग ज्ञानी में इसका जघन्य बंधन? एक तो मनुष्य में सम्यक संयम के सन्मुख होगा और सातवें नरक में गोत्र कर्म का होगा सम्यक के सन्मुख, उसका एक समय घटित होगा तथा वो जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, ये विभंग ज्ञान का एक समय है मनुष्य तिरियंचों में। और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, उसने जघन्य किया ही नहीं, 33 सागर तक जघन्य ही रहा। वेदिनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का काल ओव के समान है, यानी 1 से 4 समय। और जघन्य अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समान है, अभी हमने देखा ना 1 समय से 33 सागर, कुछ कम 33 सागर, क्योंकि विभंग ज्ञान में अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता, इसलिए कुछ कम 33 सागर लिए सातवें नरक में। आभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में 4 घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब ये समय दृष्टि है, उच्च गोत्र बांधेंगे तो गोत्र कर्म का जघन्य कब होगा? तो हो गया चौथा गुणस्थान वाला मिथ्या तो के सम्मुख वाला लेंगे और 4 घाती कर्म का शपथ में लेंगे। निकालो स्वामी, यही है ना विशेषण में है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं यहाँ विशेषण में भी दिया, ये हम तो अनुमान से लगा सकते ना, उसमें तर्क लगा सकते हैं। तथा अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, ये सम्यक्त्व का जघन्य काल अंतर्मूर्त लेना, यह कैसे ले सकते हैं? उपशम श्रेणी उतर कर भी उसको अजघन्य ले सकते हैं, परंतु अंतर्मूर्त का समय दृष्टि ही लेना है, वो ज्यादा बराबर होगा। और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर है, साधिक 66 यानी पहले तो वेदक समय दृष्टि रहा, फिर शायिक हुआ और फिर श्रेणी चढ़ गया। वेदिनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का काल के समान है, 1 से 4 समय। और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है। संकलेश वाला होगा तो वेदिनी से ज्यादा बंधेगा अनुभाग, जघन्य चाहिए तो मध्यम परिणाम वाला लेना चाहिए, ज्यादा संकलेश हो गया तो ऐसा तो बांधेगा परंतु उसका अनुभाग अधिक बांधेगा ना संकलेश में। उसमें तो हमने 1 से 4 समय लिए थे मध्यम परिणाम में, और अजघन्य के लिए क्या कहा? ज्ञानावरण के समान उत्कृष्ट का, ज्ञानावरण के समान है, यानी अभी हमने क्या देखा था यहाँ अजघन्य के लिए एक समय लिया, अंतर्मूर्त नहीं लिया। वेदिनी नाम का अजघन्य एक समय लिया, ज्ञानावरण का अजघन्य अंतर्मूर्त तक लिया। और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है ने साधिक 66 सागर। एक समय कैसे घटित होगा? हाँ, क्योंकि जघन्य तो मध्यम परिणाम में होता है ना, इसलिए उत्कृष्ट काल सादिक 66 साल, ऊपर की जो सेक्टर लाइन में ना, और जघन्य का उत्कृष्ट काल सादिक 66 साल है। हाँ, इसलिए अजगन्य का एक समय, ओग में कितना लिया था अजगन्य का, सर्वत्र एक समय गया था ना वहाँ, क्योंकि मध्यम परिणाम में ने वो लौट कर उस परिणाम पर वापस आ सकते। मन पर्य ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब घाती कर्म क्षपक में लेना और गोत्र कर्म अभी संकलेश कब होगा, असंयम के अभिमुख। इसी प्रकार अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण, वो मन परे ज्ञान का उत्कृष्ट काल लिया, क्योंकि मुनि होने के पश्चात ही मन परे ज्ञान प्रकट होगा 8वीं साल के बाद, तो कुछ कम एक पूर्व कोटि। हाँ, उपशम श्रेणी में उतरते समय बंद किया, वो अजघन्य हुआ, एक समय में मरण हुआ, तो देव में तो मन परे ज्ञान नहीं रहा। वेगनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंद का काल ओग के समान है, 1 से 4 समय, और जघन्य अनुभाग बंद का काल ज्ञानावरण के समान है। हाँ, कुछ कम पूर्व कोटि। इन्हें एक समय से लेकर कुछ कम पूर्व कोटि। इसी प्रकार संयत, सामयिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए। अब इसी का विशेष आप देखते हैं। आभिनिबोधि ज्ञानी आदि तीन ज्ञान वाले जीवों में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में होता है। उपशम श्रेणी पर आरोहण कर और उतर कर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने में कम से कम अंतर्मुहूर्त काल लगता है। ये यहाँ पर लिया उपशम श्रेणी उतर कर क्षपक श्रेणी चढ़ा, वो छोटा अंतर्मुहूर्त है। सम्यक तो हमें रहने का अंतर्मुहूर्त नहीं लिया उन्होंने। तथा गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाव बंध उत्कृष्ट संकलेश वाले मिथ्यात्व के अभिमुख जीव के होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि लेना नहीं, इसलिए वो सातवां नरक वाला नहीं सोचना। इन जीवों के गोत्र कर्म का एक बार जघन्य अनुभाव बंध होने पर पुनः उसके जघन्य अनुभाव बंध के योग्य यह अवस्था अंतर्मुहूर्त काल के पहले नहीं हो सकती। कैसे होगी? फिर दोबारा मिथ्यात्व में गया है, सम्यक दृष्टि हुआ, फिर दोबारा मिथ्यात्व में जाने के योग्य हुआ, तब उसका जघन्य होगा। अतः इनमें इन पांच कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है। नहीं, ये उन्होंने कारण कैसे लिया? देखो, गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध उत्कृष्ट संकलेश वाले मिथ्यात्व के अभिमुख है। इन जीवों के गोत्र कर्म का एक बार जघन्य अनुभाग बंध होने पर पुनः उसके जघन्य अनुभाग बंध के योग्य यह अवस्था वही मैं कह रही हूँ, अंतर्मूर्त काल के पहले नहीं हो सकती। परंतु फिर अंतर्मूर्त में कैसी होगी उसको? میرا کیا کہنا ہے, کیا میں شپک کی بات نہیں ہے, گوتر کی بات چل رہی ہے. گوتر کرم کا جگنیہ کب ہوتا ہے؟ متھیاتو کے ابھیمک والے ہوگا. تو متھیاتو کے ابھیمک ہے, انتیم سمے ہے, تو ابھی جگنیہ ہو گیا ہے, پھر دوبارہ وہ اسی مارگنا میں رہتے ہوئے جگنیہ تو ہو نہیں سکتا. مارگنا چینج ہو گئی. انہوں نے جو ریزننگ بتایا ہے, گوتر کرم کا ایک بار جگنیہ انوواک بند ہونے پر پنہ اس کے جگنیہ انوواک بند کے یوگیہ یہ اوستھا انترمرت کال کے پہلے نہیں ہو سکتی. ہاں ہو سکتی, پر تو متھیاتو میں جا کے پھر سمے کو پراپت کرے گا. تو اسی مارگنا میں رہتے ہوئے ہمیں سوچنا ہے, یعنی اس کا انترمورت والا سمے درشٹی لینا ہے. یہاں پر جگنیہ کیا, اس نے جگنیہ کیا نہیں, یا جگنیہ کے پہلے انترمورت تک اجگنیہ رہا, انترمورت والا سمے درشٹی لینا ہے یہاں پر, جس نے اجگنیہ ہی بند کیا ہے. دسویں میں
رک
گیا, واپس شروع ہوا, واپس تو بھی انتر ہوگا, یعنی بندے رک گئے اس اپیکشا سے. دو بار شرینی نہیں, وہ جگنیہ کب ہوتا ہے اس کے لیے وہ برابر ہے, پرنتو آگے جو لکھا نا یہ اوستھا انترمورت کال کے پہلے نہیں ہو سکتی, وہ ریزننگ اس میں برابر نہیں ہے. ہاں اپشن شرینی اترتے ہوئے جگنیہ ہی باندھا اس نے, جو جگنیہ نہیں وہ سارا جگنیہ ہے, وہاں تو اتکرشٹ بند ہو رہا ہے. اتکرشٹ بند اس کو اجگنیہ ہی کہیں گے. تو اپشن شرینی اترتے ہوئے بند شروع ہوا اور شپک شرینی میں بند رک گیا. نہیں یہ اتنا اٹپٹا نہیں لینا ہے, وہ تو کال بہت بڑا ہے. ہاں وہ لینا ہی نہیں, یہاں پر کم سے کم انتر اپشن شرینی اترتے ہوئے اور پھر شپک شرینی چڑھا. یہاں جو لکھا نا ان جیوں کے گوتر کرم کا ایک بار جگنیہ انوواک بند ہونے پر, یہ جو لکھا ہے گوتر کرم کے جگنیہ انوواک, دیکھو میں ابھی تیسری لائن پڑھتی ہوں وشیشارتھ کی, تتھا گوتر کرم کا جگنیہ انوواک بند اتکرشٹ سنکلیش والے متھیاتو کے ابھیمکھ جیو کے ہوتا ہے, اس لیے اس کا ایک سمے تو گھٹت ہوا. یہاں لکھا نا ان جیووں کے گوتر کرم کا ایک بار جگنیہ انوواک بند ہونے پر کیا کہیں گے, ابھی اسی مارگنا میں پھر دوبارہ جگنیہ نہیں ہو سکتا, اسی مارگنا میں وہ اجگنیہ نہیں ہوگا. ہاں ہونے پر پنہ, یہاں اسے نیچے لکھ دو پینسل سے, پنہ ان جیووں کے گوتر کرم کا ایک بار جگنیہ انوواک بند ہونے پر پنہ اجگنیہ نہیں ہوا کیونکہ مارگنا چھوٹ جائے, پنہ اجگنیہ نہیں ہوگا. کیونکہ مارگنا بدلے گی, مارگنا بدلے گی نا, ابھی نبودک نہیں رہا, وہ متھیاتو کے ابھیمکھ ہے تو متھیاتو میں چلا جائے گا. اس لیے اپشم شرینی اتر کر پنہ شپک شرینی پر آروہن کرنے میں کرتے ہوئے आरोहण करते हुए अंतर मुहूर्त तक अजगण्य बंद होगा। आगे तो बढ़ा रहे, तो इनमें इन पांच कर्मों में के अजगन्य अनुभाग बंद का, जगन्य काल अंतर्मूर्त का, एक वाक्य निकाल पुनः के आगे जो वाक्य ना, उसके जगन्य अनुभाग बंद के योग्य अवस्था अंतर्मूर्त काल के पहले नहीं हो सकती, ये वाक्य निकाल देना। आगे बढ़े भी इन्हें अंतर्मूर्त क्यों कहा वो ख्याल में आया। वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंद पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान मध्यम परिणाम वाले किसी भी जीव के हो सकता है। ऐसे जीव के एक बार जघन्य अनुभाग बंद होकर और बीच में अजघन्य अनुभाग बंद का अंतर देकर पुनः जघन्य अनुभाग बंद संभव है, इसलिए इनमें वेदनी और नाम कर्म के अजगण्य अनुभाग बंद का जगन्य काल एक समय कहा है, शेष कथन सुगम है। ये तो हमने अभी देखा था। और उत्कृष्ट काल तो हमने 66 सागर देखा। हाँ, पर्याप्त जीवों के होते जगन्य अनुभाग बंद किसको होगा, तो पर्याप्त जो उनके होगा। आगे बढ़े अभी क्या स्वामित्व देखना है, देख लो देख लो। ट्वेंटी 3 अभिनिबोधिक ज्ञानी आयु के लिए निवर्तमान वगैरह लिखा था उन्होंने। वेदनीय 4 गति का जीव परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला, आयु के जघन्य अनुभाग बंध का कौन है, जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित। ये कहाँ डाला उन्होंने, ओ वेदनीय और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध ये पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान ये आयु में डालते हैं ना। तो मध्यम परिणाम वाले किसी भी जीव के होता है, ऐसे जीव के एक बार जघन्य अनुभाग बंद कर बीच में अजघन्य अनुभाग बंद का अंत, ये पढ़ा मैंने अभी, ये तो हो गया। आगे लास्ट पैरेग्राफ 41 पेज परिहार विशुद्धि संयत जीवों में उन्होंने ऐसा लिया, ये पर्याप्त निवृत्ति ये शब्द क्यों डाला, तो मैंने बोला कि हम स्वामित्व देखेंगे, तो हमने स्वामित्व देखा जघन्य वेदनीय और नाम के जघन्य अनुभाग बंद का स्वामित्व निकालो। 23 पेज अभिनिबोधिक ज्ञानी में तो कहते वेदनीय नाम की तो सेकंड लाइन में बात की थी, वेदनीय नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अन्यतर चार गति का जीव परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला जो है। और आयु के बारे में आगे लाइन लिखी थी, आयु के जघन्य अनुवाक बंध का स्वामी कौन है? तो जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान और जघन्य अनुभाग में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। तो वेदनीय और नाम में कभी पर्याप्त निवृत्ति की बात नहीं आई थी, इसलिए यह विशेषार्थ में जो डाली है वो योग्य नहीं है। तो अभी जो हमने पढ़ा विशेषार्थ का एक दो तीन चार पांच छठी लाइन सातवीं लाइन, वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध, आगे के तीन शब्द नहीं चाहिए, मध्यम परिणाम वाले किसी भी जीव के हो सकता है, इतना रखना। क्योंकि ये कथन हमेशा आयु के बारे में आया है। अर्थ उसका यही है कि वो पर्याप्त जीवों के होगा, क्योंकि समय दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में तो आयु का बंधन नहीं करेंगे, और ओग में जघन्य के लिए तो लब्धि अपर्याप्त उनको भी लिया था, वहां अपर्याप्त निवृत्ति से लिया था से निवर्तमान। अभी हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे 41 पेज का, परिहार विशुद्धि संयत जीवों में, नितिन भाई गुणस्थान 600, चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। चार घाती कर्म का जघन्य कब होगा? शायिक समय तो होगा कि नहीं होगा? सपना होगी, अनंत अनुबंधी का विषय जन होगा, है ना, जहाँ जहाँ करण परिणाम होते हो सकता है। इनका प्रश्न ख्याल में है? देखो, जहाँ जहाँ करण परिणाम होते वहाँ एक समय होता है, क्योंकि अनुभव प्रति समय अनंत गुना बढ़ता है। तो दो समय कहाँ होता है? रेगुलर जो जीव है उनके दो समय होते हैं। आपको तो चार समय पूछना था फिर। अति संकलेश और अति विशुद्ध में दो समय होते हैं। मैंने ऐसा उत्तर दिया, यहाँ भी परिहार विशुद्धि के काल में क्षायिक समय तो हो सकता है, वहाँ तीन करण परिणाम है, तो वहाँ एक समय के लिए हो सकती है। अन्य कर लिया जगन्य उत्कृष्ट काल एक समय। अब वो सामय के सन्मुख वाले का गोत्र का होगा ना, गोत्र का कब होगा? सामय के सन्मुख। और चार घाती कर्म का तो हो सकता है कि श्रेणी के सन्मुख वाला इसमें से वो किसी भी जीव के लिए, वहां पर भी सन्मुख वाले को नहीं लिया था, है ना। इसमें देखो उत्तर प्रकृति में परिहार विशुद्धि में वैसे भी उच्च गोत्र ही बंधेगा। क्या लेना है हमें? काल लेना है ना, काल या स्वामी तो कोई भी ले सकते हैं। 305 पर है क्या? कृष्ण लेशा है। हमें क्या देखना है? ज्ञानी काल, अभिनिबोधिक ज्ञानी 302 पर है, और मनोपरिज्ञानी हमें संयत देखने ना, कौन सा परिहार विशुद्ध 304 पृष्ठ पर। जगन्य का जगन्य काल अंतर्मुक्त है, ऐसे ही घटित करना है, ऐसे ही नहीं, संयत में भी ऐसा ही लिया। नहीं, फिर भी यहाँ पर भी उन्होंने एक समय लिया है। यानी वह मैक्सिमम विशुद्धि वाला जीव लिया, एक समय वाला ही लिया। यही बात घटित होती ना वहां पर। स्वामित्व 229। परिहार विशुद्धि में लिखा है अलग। इतनी विशेषता है संयम के अभिमुख उनका। परिहार विशुद्धि जो है सामयिक छेदोपस्थान के अनुरूप जगन्नी स्वामित्व कहना चाहिए, तथा जो क्षपक प्रकृति है उनका जगन्नी स्वामित्व सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत जीव के कहना चाहिए। सर्वविशुद्ध असंयत अप्रमत्त लिया नहीं, सर्वविशुद्ध में लेना अभी एक समय की बात होगी, क्योंकि वहां पर हमने देखा ना उसमें भी क्षपणा वगैरह कर सकता है, इसलिए वहां पर भी एक समय घटित होगा। सर्वविशुद्ध ले लिया उन्होंने, क्या कर रहे उसकी बात नहीं ली। यहाँ तो यह बात होती है एक समय घटित होता है। अपना पेज लाना 41। हाँ, यानी सर्व विशुद्ध ले लिया तो कर्ण परिणामों में सर्व विशुद्धि होती है, वहां पर ले सकते हैं। अजगन्य अनुभाग बंद का पढ़ू मैं,
एक समय
कन्फर्म है ही। परिहार विशुद्धि और उपशम समय तो एक साथ नहीं होगा। परंतु वो अधकरण परिणाम वो द्वितीय उपशम वाले की होगा। परिहार विशुद्धि के काल में अधकरण करेगा द्वितीय उपशम के लिए। सामायिक हो जाएगा ना तभी वो। परंतु यहाँ विशुद्धि वाला लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सपना में। हाँ, शायद समय था। सेकंड लाइन एक ही समय। अजगन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल अंतर्मुख, क्योंकि परिहार विशुद्धि का जघन्य काल ही अंतर्मुख है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। तो 38 वर्ष हम माइनस करते हैं ना। वेदनी और नाम कर्म का भंग मनपर्य ज्ञानी जीवों के समान है। अभी हमने ऊपर देखा था मनपर्य में वेदनी और नाम कर्म ओके समान लिखा था वहां पर, यानी एक से चार समय। और अजगन्य का एक समय से लेकर कुछ कम पूर्व कोटि होगा है ना? समझ में आती बात ये? वेदनी और नाम का क्या होता है मध्यम परिणाम में, इसलिए एक से चार समय। वो तो जगन्य की बात है। अजगन्य के लिए कैसे सोचते? एक ही समय के लिए अजगन्य हुआ, बीच में दो जगन्य के बीच में अजगन्य हुआ तो एक समय हुआ। या दूसरी बात सोचनी तो अजगन्य ही रहा, उसने जगन्य किया ही नहीं, तो कितने कहां तक परिहार विशुद्धि रहेगी? कुछ कम पूर्वक इतना लेना। इसी प्रकार संहिता संयत जीवों के जानना चाहिए। अभी संहिता संयत में भी पूर्व कोटि का एक ही रोल ले सकते हैं, उसमें भी कुछ कम ये कथन तो उसके लिए भी लागू होगा। अब यहाँ पर भी एक समय होगा कि नहीं होगा चार घाती कर्मों का? एक समय होगा। कब होगा? संयम के अभी होगा, यानी मनुष्य में होगा, संयम के अभी होगा। और अजगन्य का जगन्य काल कितना होगा? क्योंकि संहिता संयुक्त का जगन्य काल अंतर होगा, कुछ कम पूर्व कोटि। अभी कुछ कम में तो हम तिर्यंश को भी ले सकते हैं। सूक्ष्म सांप्रायिक इत हुआ, सांप्रायिक सांप्रायिक इस संयम मार्कना की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्राय यहां लिया। तो सूक्ष्म सांप्रायिक जीवों में छह कर्मों का भंग अपगत वेदी जीवों के समान है। यानी सूक्ष्म सांप्राय में चार घाती कर्म बंद रहे कि नहीं बंद रहे? बंद रहे। नाम क्या उनके? घाती तो बंधेगी, कौन से बंधेगी? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, अंतरा। मोनी का बंधे यहाँ नहीं है, मोनी को छोड़ देंगे। यानी तीन घाती और तीन अघाती है ना, आयु को छोड़ देना, मोनी और आयु को छोड़ देना, बाकी छह कर्म बनते हैं। तो उसका भंग अपगत वेदी के समान है। यानी हम देखते हैं अभी तीन घाती का जघन्य कब होगा? अंतिम समय में, शपक के शपक अंतिम समय में, तो एक समय होगा। और जघन्य का एक समय कहाँ होगा? उपशम श्रेणी उतरते हुए सूक्ष्म सांप्राय में आया, एक समय में मर गया। यानी एक समय के लिए जो बंद किया वो अजघन्य था, मरकर उसका संयम बदल गया, असंयमी हो गया देव में, और अधिक से अधिक रहेगा तो अंतर्मुहूर्त तक रहेगा। अब ये हो गया। अभी गोत्र का, गोत्र का जघन्य बंधक कब होगा? उपशम श्रेणी उतरते हुए, वो भी एक समय के लिए। और अजघन्य एक समय से अंतर। वेदनी और नाम का एक ही समय होगा, ये चार समय यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ परिवर्तमान नहीं परिणाम। यहाँ तो या तो विशुद्धि बढ़ रही है या उतरते समय संतोष बढ़ रहा है प्रति समय। अब 42 पेज पर आए हूँ। कृष्ण लेशा वाले, लेशा मार्गना यहाँ से आरंभ होती है। कृष्ण लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अब यहाँ तो कोई कर्म परिणाम वगैरह नहीं ले सकते, स्वस्थान में ले सकेंगे। तो कृष्ण लेशा वाले में कौन ऐसा होगा? हाँ, समय दृष्टि लेना है, शायद समय दृष्टि भी ले सकते हैं मनुष्य में कृष्ण लेशा वाला। ये था योग्य उसकी जो विशुद्धि ज्यादा है। तब अब यहाँ संयम के अभिमुख वगैरह नहीं कहना, तब उसके शुभ लेशा होगा। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, लेशा पलटने की अपेक्षा लेना। सर्व विशुद्ध नार के लिए, कृष्ण लेशा में सर्व विशुद्ध नार के लिए। हाँ, अपन नारकी को लिया है, पेज नंबर निकालना पेज नंबर 24 कृष्ण लेशा सर्व विशुद्ध अन्यतर नारकी समय दृष्टि जीव चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंदका स्वामी नारकी समय दृष्टि तो एक और दो समय लिए अजघन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है अजघन्य के मनुष्य 3 इंच में लेशा पलट जाएंगी उस अपेक्षा से और उत्कृष्ट काल साधिक 33 आगर है यानी जाने के पहले और आने पर कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल लिया है लेशा का काल कैसे लेशा का काल एक समय कैसे
यहाँ पे जो चार जाति का
दो जगन्य के बीच में ये नहीं होगा अंतर देखना पड़ेगा तो एक समय का अंतर होता है क्या जगन्य का बोल आगे देखें काल के बाद अंतर आने वाला है ना कृष्ण लेशा में यानी कंफर्म होगा ना अपना हम जो सोच रहे हैं 54 कृष्ण उत्कृष्ट की बात है जगन्य 71 70 कृष्ण लेशा देखो एक समय के अंतर से भी हो सकते हैं विशेषार्थ में पहली लाइन में लिखा है 70 पेज पर अजगन्य का जगन्य काल एक समय क्योंकि एक समय के अंतर से जगन्य हुआ सत्तर पेज पर रेफरेंस मिला ना हमें फिर से पढ़ती हूँ मैं यहाँ पर अपना 42 पेज चल रहा है कृष्ण लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है हमने देखा सर्व विशुद्ध नारकी समय दृष्टि और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है क्योंकि अजघन्य बीच में हुआ दो जघन्य के बीच में अजघन्य एक समय के लिए हुआ और उत्कृष्ट काल साधिक 33 आगर है पूरी कृष्ण लेशा में उसने अजघन्य ही किया जघन्य किया ही नहीं वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है वेदनी और नाम में तो एक समय से लेकर चार समय देखते हैं और गोत्र कर्म का जघन्य एक समय के लिए देखते हैं कृष्ण लेशा वाले तो घटित होगा ही होगा नारकी में समय तो के सन्मुख वाले के अजघन्य अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समय अजघन्य का कैसे जघन्य एक समय से लेकर उत्कृष्ट साधिक 33 आगर इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मुक्त है लेशा पलटेगी मनुष्य 3 इंच में सातवें नरक में घटित करना है तो वहां नहीं घटित होगा, क्योंकि दोबारा हुआ तो वेदक समय तो होगा, वहां पर भी इतनी विशुद्धि होगी कि जगन्य हो जावे, पता नहीं। ठीक है, सम्यक करके अभी हूँ कितना ही लिया, वो औषमिक है कि उसकी चर्चा नहीं की। हाँ, वेदनी और नाम एक समय से चार समय, एक समय सम्यक करके अभिमुख वाला। वही कहते हैं, उन्होंने लिखा नहीं है, और प्रथमोक्षम लेते हैं तो फिर नारकी में उसको दोबारा मिथ्यात्व में जाकर नहीं प्राप्त करा सकते अगर प्रथमोक्षम लेते हैं तो, और वेदक प्राप्त होता है तो वहां पर भी क्या इतनी उसके होता है कि नहीं होता, ये भी एक प्रश्न है। नारकी में अंतर देखना पड़ेगा, नारकी में हमने गोत्र कर्म के जघन्य का अंतर और जघन्य का काल कितना देखा था,
जघन्य का अंतर भी
वेद, यानी आप कहाँ नारकी में देखना चाहते हैं? अंतर देख लो जगन्य का कृष्ण लेशा में, सत्तर पेज अभी जो हमने देखा था, चार का तीन, हमें कौन सा देखना है, नाम गुथा। गोत्र कर्म का बंध सामान्य नारकियों के समान, उसमें देखो सामान्य नारकी वेदनीय नाम का एक समय कुछ कम 33 सागर। वेदनी नाम का तो हो सकता है, हमें गोत्र का देखना है। गोत्र का मैं पेज नंबर 58 पर पढ़ रही हूँ, 143 नंबर का पॉइंट, गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाव बंध का जघन्य अंतर अंतर मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। वेदक भी ले सकते हैं ना, देखो नीचे से विशेषार्थ में हम पढ़े, नीचे से चौथी लाइन पेज नंबर 58 सातवें नरक में, उसके ऊपर की एक लाइन पढ़ना, गोत्र का सातवें नरक में सम्यक के अभिमुख हुए जीव के होता है क्या, जगन्य अनुभव बंध, और उसका हमें अंतर देखना है, इसलिए सातवें नरक में प्रारंभ में और अंत में इस व्यवस्था को प्राप्त कर कर्मों का जगन्य अनुभव बंध संभव है, इसलिए इन कर्मों के जगन्य अनुभव बंध का भी कुछ कम 33 सागर उत्कृष्ट अंतर कहा है। गोत्र कर्म का एक बार जगन्य अनुभव बंध होने पर पुनः वैसी योग्यता अंतर्मूर्त काल के पहले नहीं आती, इसलिए जगन्य अनुभव बंध का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त कहा है, यानी वो वेदक में भी होगा। ये पहले हमने संयम के अभिमुख में वेदक वाले को भी लिया था, आपको याद होगा, तो हम तो ऐसे ही सोचते थे कि औषमिक वाले को होगा, परंतु औषमिक वाले के तो ये प्रायगलब्धि के वगैरह स्थान है सारे, वहाँ तो वेदक हाँ, क्योंकि थोड़े काल में अधिक विशुद्धि प्राप्त हो सकती है उसकी, ऐसा है उसमें, मुझे याद है पहले हमने पढ़ा था ये बात। विदेह समय दृष्टि के भी उतनी विशुद्धि होती है, यानी हो सकती है, होती ही ऐसा नहीं कहेंगे हम। यानी मनुष्य तिरियंज में लेने की जरूरत नहीं, वहां पर लेशा पलटाने की बात, अंतर्मुहूर्त में दोबारा फिर समय को प्राप्त करेगा तो हो सकता है। या मनुष्य तिरियंज में तो एक लेशा का काल भी ले सकता है, लेशा का छोटा काल है, एक लेशा का काल।
वेदक को भी दो
क्या
वेदक प्राप्त करेगा, वेदक चल
हाँ
उसको भी दो कर्म
हो सकते हैं
कि नहीं भी हो सकते
हैं? नहीं भी हो सकते हैं, इमीडिएट आता है तो मैं बिना करण के भी चढ़ता है, ये नहीं
बिना
अभी उसके झमेले में नहीं पड़ेंगे। दो बार सम्यक तो प्राप्त किया है, इतना रहिए ना अभी, क्योंकि विशुद्धि के अलग अलग परिणाम है और उसको मिनिमम इतने काल में उतनी विशुद्धि हो सकती, इतना ही हमको लेना है, क्योंकि हर जो सम्यक तो प्राप्त करने वाले की विशुद्धि समान तो नहीं होगी। आगे बढ़े कि नहीं, अभी हम अपने पेज पर आते हैं, 42 पर। वेदिनी नाम और गोत्र की बात चल रही थी, गोत्र कर्म के अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त देखा हमने, उसमें हमने कारण देखा लेशा परिवर्तन का भी होता है और नरक में ही घटित करना है तो दोबारा समय तो प्राप्त करेगा मित्र, क्योंकि लेशा का काल छोटा होगा। नील और कपोत लेशा वाले जीवों में सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का काल पहले पृथ्वी के समान है, क्योंकि अभी वो तो गोत्र कर्म का जो सातवें नरक में घटित करते थे वो नहीं घटित होगा, इसलिए पहली पृथ्वी के समान है। अजगन्य अनुभाग बंध का काल अनुत्कृष्ट के समान है, गोत्र कर्म का जघन्य हमने देखा था वो मध्यम परिणाम वाले के होगा, वेदिनी नाम के समान होगा, इसलिए सातों कर्मों का लिया उन्होंने, चार घाती कर्मों का विशुद्धि वाले को लेना, नील कपोत में सर्व विशुद्ध सम्य दृष्टि लेना, और तीन के लिए नाम गोत्र और वेदिनी नाम गोत्र, हाँ एक से चार समय होगा। उसका काल समान है, एक से चार समय। और फिर अजगन्य का उत्कृष्ट अपने अपने लेशा का काल ले लेना उसमें। मिथ्या दृष्टि चार घाती के लिए समय दृष्टि लेना, यानी एक से दो समय। अब विशेषा कृष्ण लेशा में चार घाती कर्मों का बंध समय दृष्टि सर्व विशुद्ध जीव के होता है, इसलिए इनमें जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। इस लेशा में गोत्र का जगन्य अनुभाग बंध सातवीं पृथ्वी के नारकी के सम्यक्त के अभिमुख होने पर अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय होता है, यह जीव उसके बाद नरक में अंतर्मूर्त काल तक अवश्य रहता है। अच्छा, इसलिए इसके गोत्र कर्म के अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन सुगम है। हम ऐसा भी ले सकते हैं, छठे नरक में भी कृष्ण लेशा तो है, तो वहां सम्यक्त के नहीं, वहां पर वो सम्यक्त के अभिमुख वाले को सातवें में ही होगा, सातवें नरक का नारकी सम्यक्त के अभिमुख, उसने जगन्य बंद किया, सम्य दृष्टि हुआ और एक अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व में गया तो भी अंतर्मूर्ति रहा ना, ये उसका मरण होना चाहिए। हाँ अंत तक का वो तो नरक में घटित होगा, लेशा तो बाद में भी चलती रहेगी। देखो ये तो लेशा परिवर्तन हम मनुष्य 3 इंच में घटित कर सकते हैं, क्योंकि वहां अगर 7वें नरक में जगन ने किया, वहां समय दृष्टि रहा अंतर्मूर्त तक, फिर मिथ्यात्व में गया, फिर अंतर्मूर्त में आयु का बंध किया, फिर वहां से यानी तब तक वो कृष्ण लेशा में अजगन ही बांधता रहा, फिर मरा और फिर कृष्ण लेशा में ही 3 इंच में उत्पन्न हुआ, फिर लेशा पड़ गई, तो ये बहुत बड़ा काल होगा। उसकी अपेक्षा मात्र अजगन ही लेना है तो मनुष्य 3 इंच में उसने अजगन नहीं किया कृष्ण लेशा के रहते हुए, वो काल छोटा होगा। यानी नारकी के लिए ये घटित हो सकता है, नारकी ने वो किया और नारकी से वो 3 इंच हो गया, तो वहां केवल लेशा की बात है, इसलिए वो तो लेशा का काल बढ़ेगा। मनुष्य 3 इंच में लेशा का काल छोटा होता है। वो तो हो गया, वो जगन्य कहाँ होता है तो 7वें नरक में। अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय होता है। यहाँ ऐसा क्या गड़बड़ी कर दी?
परिणाम के समय होता है, जब देख सकते हैं ना, उत्कृष्ट परिणाम के समय होता है।
उत्कृष्ट उनको कुछ अलग लिखना था नारकी के, उसमें क्या लिखा है उन्होंने? सर्व विशुद्ध वाले के होता है, ओग में लिखा होगा ना, जगन्य कहां से शुरू हुआ है? 34 से शुरू हुआ था और उसके विशेषार्थ में गोत्र कर्म का जगन अनुभव हमने सातवीं पृथ्वी में सम्यक्त के अभिमुख जीव के बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में होता है। अंतिम समय में होता है, इतना करो ना, उत्कृष्ट अनुभव बंध निकाल दो। इस विशेष अर्थ में तीसरी लाइन इस रेशा में गोत्र का जगन्य अनुभव बंध सातवीं पृथ्वी के नारकी के सम्यक्त्व के अभिमुख होने पर अंतिम समय होता है। अंतिम समय होता है, इतना ही रखो। उत्कृष्ट क्योंकि जगन्य अनुभव हो रहा है ना, वहां उत्कृष्ट अनुभव बनने की बात नहीं है। आगे पीत और पद्म, पीत और पद्म लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब श्रेणी के सन्मुख वाला ले सकते हैं यहाँ पर, कहाँ लेना
श्रेणी के सन्मुख वाले?
वही तो सातवें में, सातवें गुण क्या कहा? श्रेणी अभी चढ़ा नहीं है,
शुक्ल
लेशा के पूर्व में,
शुक्ल लेशा होने के पूर्व
में, या पीत पद्म में हम ले सकते कि वहाँ तो संयम के अभी हो, पीत और पद्म तो सातवें गुण स्थान तक है, श्रेणी के सन्मुख वाला ले या वहाँ क्षपणा वाला ले सकते हैं, ले लो स्वामित्व में देख लो जगन्य का स्वामित्व पीतलेशा में, अन्यतर अप्रमत्त संयज्य अन्यतर ले लिया। हाँ 24 पेज पर नीचे की लाइन जगन्य का वहाँ उत्कृष्ट होगा शायद 24। हाँ यहाँ दो समय नहीं लिए, यहाँ एक ही समय लिया है। हाँ परिहार विशुद्धि में यहाँ पर भी हम क्षायिक समय को प्राप्त करने वाला ले सकते हैं या करण परिणाम वाला ही लेना, तो एक समय में एक एक अनुभव बढ़ता है उसके बाद चलेगा 24 पेज
पर।
तो एक समय घटित होना है बस इतना ही, 42 पेज निकालना अपना 42 पीतलेशा में सेकंड लाइन और जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य एक समय है वहां पर हमने केवल उसका स्वामित्व देखा 24 पेज पर। तो स्वामित्व में उन्होंने बताया था क्योंकि पीतलेशा कहाँ तक है तो सातवें गुणस्थान तक है, तो सर्व विशुद्ध अप्रमत्त लिया ना सातवें गुणस्थान वाला। मैंने उसको श्रेणी के सन्मुख लिखा था, बताया था पर अधकरण में शुक्ल लेशा हो जाती है ना अधकरण में, या क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करते समय ले सकते हैं ना, हाँ वो लगे क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करने वाला ले सकते नहीं, क्योंकि श्रेणी के सन्मुख अवस्था में भी लेशा पलटेगी ना उसकी, अपन पीछे पद्म होगा पद्म से शुक्ल होगा, पीत में पीत पद्म दोनों के लिए है, परंतु पीत पद्म में उनके अनिवृत्तिकरण परिणाम तो क्षायिक समय में हो गए और वहाँ अधकरण के पूर्व परिणाम लेने पड़ेंगे श्रेणी के सन्मुख लेना है तो। बस सर्वविशुद्ध इतना ही लेना है, हम उसमें कुछ अभी अपने शब्द नहीं डालेंगे, सोच सकते हैं जैसे परिहार विशुद्धि में उन्होंने एक समय लिया था सर्व विशुद्ध अप्रमत्त, वैसे यहाँ पर भी सर्व विशुद्ध अप्रमत्त लेना, इतना ही लिखेंगे हम सर्व विशुद्ध अप्रमत्त। ये तो जगन्य की बात है, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, ये लेशा का काल है, लेशा परिवर्तन होता है, और उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक 2 सागर और साधिक 18 सागर, ये पद्म के लिए साधिक 18 सागर कहाँ की है आयु? ससुराल की। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का भंग सौधर्म कल्प के समान है, यानी वेदनीय नाम गोत्र अभी गोत्र के लिए भी मध्यम परिणाम वाला लेना पड़ेगा, तो 1 से 4 समय लेंगे। हमेशा गोत्र का हम जो सातवें नरक में वहां तो कृष्ण लेश है, यह हम मध्यम परिणाम वाला लेना एक से चार से। अजघन्य अनुभाग बंद का जघन्य कालिक समय बीच में, दो जघन्य के बीच में, और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है, यानी उत्कृष्ट अभी पीत का जो कंटिन्यूस पीत लेशा रहती है, तो साधिक दो सागर कहो या ढाई सागर कहो और साधिक 18 सागर। समझ में आई ये बात? शुक्ल लेशा वाले जीवों में, अभी शुक्ल लेशा तो श्रेणी में भी है, चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय है, शपक के अपने अपने बंध विच्छित्ति के समय, अजघन्य अनुभाग बंद का काल अनुत्कृष्ट के समान है। अब अजघन्य का जघन्य काल कितना होगा? शुक्ल लेशा वाला अजघन्य बंद कर रहे हैं अंतर्मुख होगा और उत्कृष्ट 33 पेज देख लो, अनुत्कृष्ट के लिए ना। देखो यहाँ लिखा है वेदीय नाम गोत्र की बात, पांच लेशा वालों में पेज 33 पर, वो 95 नंबर का पॉइंट यहाँ लिखा ना, इतनी विशेषता कि पीत पद्म वाले जीवों में वेदनीय नाम गोत्र कर्म के विषय में यदि दर्शन मुनि क्षपक जीव है तो स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल काय स्थिति प्रमाण है। अभी यहाँ अजगन्य को लगा लेना है, हम शुक्ल लेशा में देख रहे थे ना अभी, अभी नहीं नहीं वो अपना जो पहला पॉइंट चल रहा था उसके लिए है, अब शुक्ल लेशा वाली की बात नीचे से दूसरे पैराग्राफ में। ये तो चार घाती का तो एक समय होता ही है, अनुत्कृष्ट का एक समय और उत्कृष्ट साधिक 33 सागर। अगर शुक्ल रेशा में मरेगा तो शुक्ल रेशा में जन्म श्रेणी में मरने वाले, वो शुक्ल रेशा में मरने वाले अनंत प्राण से ऊपर सब चले जाएंगे, जिस रेशा में मरेगा उसी रेशा में उत्पन्न होगा, वो नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न नहीं होगी श्रेणी में मरकर। नहीं नहीं उन्नत्कृष्ट अनुभव का जघन्य काल एक समय है, जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा अनुत्कृष्ट है ना। अरे वहां तो उत्कृष्ट की बात थी, तो उत्कृष्ट अनुभव बंद कौन करता है? चार घाती का मिथ्या दृष्टि, तो दो उत्कृष्ट के बीच में अनुत्कृष्ट हो सकता है, वही तो मुझे वो नहीं कहना, अनुत्कृष्ट का काल देखना है ना। अनुत्कृष्ट के समान है कथन, केवल उसके समान है, स्वामित्व तो नहीं लेना है। एक समय से उत्कृष्ट साधिक 33 सागर लिए, ऊपर क्या लिखा? शुक्ल वाले में चार घाती कर्म, सुकाय घातीचार जन्य एक समूह अगजगण्य नुकस बंधु इसमें काल विषय दर्शन एक समय पांचवे थे सातवें गुण स्थान में बताया लेशा परिवर्तन से या गुणस्थान परिवर्तन से इसे यहाँ लिया होगा एक समय
गुणस्थान बदलो
अच्छा गुणस्थान में एक समय लेशा
हाँ
कौन से एक की होगी तो शुक्ल लेशा में मरकर मनुष्य 3 इंच मनुष्य में नहीं उत्पन्न होगा देव में जाएगा हाँ देव में मनुष्य में आ सकता है उसकी लेशा पलट सकती है परंतु वहाँ देव में तो कंटिन्यूस 31 सागर तक वही अनुत्कृष्ट या अजगण्य बांध रहा है ना अरे होना चाहिए ना यहाँ क्यों लिखा वो तो देखना है अंतर में देखो या जैसे उत्तर प्रकृति में देखो अजगण्य अनुवाद बंध का काल 300 या 200 पीस देखते थे पेज नंबर मुझे मिला है 308 कौन से देव किसका देखना है हमको 4 गाती का अजगण्य है ना देखो शुक्ल लेशा में 5 ज्ञानार्थ दर्शन 12 कुशाय भजी गुप्सा वगैरह वगैरह जगन्य अनुभाग का जगन्य उत्कृष्ट काल एक समय वो तो हो गया अजगन्य अनुभाग बंद का जगन्य काल अंतर्मूर्त उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर एक समय कहाँ लिखा है वही तो जगन्य के एक समय में कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ अजगन्य का अनुत्कृष्ट के समान कहा था और अनुत्कृष्ट में उन्होंने अंतर्मूर्त नहीं एक समय लिया था क्योंकि उत्कृष्ट के बीच में अनुत्कृष्ट होता है। हाँ, वो उत्कृष्ट काल तो घटित हो सकता है परंतु जघन्य काल अंतर्मूर्त होगा। इसका अनुत्कृष्ट कितना लिखा है देखो काल में, अनुत्कृष्ट का काल देखो इस दिशा में, उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। लेशा में देखना है पेज नंबर 265-66 में होगा, 67 में। अनुत्कृष्ट का जघन्य एक समय उत्कृष्ट काल से अधिक तीर्थ सागर, अनुत्कृष्ट का एक समय होता है परंतु अजगण्य का तो अंतर्मूर्त होगा, है ना? अजगण्य का अनुत्कृष्ट के समान ही नहीं, अजगण्य का जघन्य काल तो अंतर्मूर्त है। अनुत्कृष्ट का एक समय वहां लिखी ब्रैकेट नीचे, और जघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट काल ठीक है, और जघन्य का उत्कृष्ट काल साधिक देते से। वो अनुत्कृष्ट के समान है। अभी इसकी कौन सा लिखा हमने रेफरेंस 300 दोनों ही पेज 267। अंतर में क्या लिखा? इसी के अंतर में जगन्य के अंतर देखना पड़ेगा। हो गया समय 70 निकालना। शुक्ल लेशा वाले में यहाँ तो पीठ है, चार घाती कर्मों का ओके समान। सत्तावन पेज जघन्य अनुभव बंद का अंतर है, अजघन्य का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर होता है, क्योंकि वो तो श्रेणी में बंद रुक गया फिर प्राप्त होता है। अजघन्य का अंतर, जघन्य का तो अंतर नहीं होगा, अजघन्य का अंतर उत्कृष्ट श्रेणी में बंद रुक गया और फिर शुरू हुआ। अभी उसके बाद छोड़ेंगे अपने पेज नंबर 42। अब शुक्लेशा की बात कल फिर पड़े। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो।